नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। इसराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बीजिंग में उसके दूतावास के एक कर्मचारी पर शुक्रवार को हमला किया गया, जिसके बाद वह अस्पताल में भर्ती है। चीन ने हमले के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है। अभी स्पष्ट नहीं हो सका है कि हमला किस वजह से किया गया। हालांकि ये हमला उस वक्त हुआ जब इसराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास के हमले के बाद दोनों ओर से जारी संघर्ष के संबंध में चीन की ओर से दिए गए बयान के लिए उसकी आलोचना की थी। विदेश मंत्रालय ने पत्रकारों को एक बयान जारी करते हुए कहा कि हमला दूतावास की जमीन पर नहीं हुआ। बयान में कहा गया, कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी हालत स्थिर है। बयान में अन्य कोई जानकारी नहीं दी गई। बयान में कहा गया कि इजरायली अधिकारी इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमला किस वजह से किया गया। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के खराब स्वास्थ्य की खबरों के बाद परिवार के सदस्यों ने शुक्रवार को उनकी सेहत को लेकर चिंता व्यक्त की। चंद्रबाबू नायडू के बेटे लोकेश, पत्नी भुवनेश्वरी और बहू ब्रह्माणी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि उनकी जान को खतरा है। परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तेलुगु देशम पार्टी के महासचिव और नायडू के बेटे नारा लोकेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के जीवन को खतरा है। उन्हें जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उनकी सुरक्षा खतरे में है। वह गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। मच्छरों से परेशान है, दूषित पानी, वजन घटना, संक्रमण और एलर्जी से परेशान है और उन्हें समय पर चिकित्सा नहीं मिल रही है। आंध्र प्रदेश सरकार उन्हें स्टेरॉइड देने की कोशिश कर रही है। पंजाब में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पंजाब के पूर्व मंत्री और अमृतसर के दलित नेता राजकुमार वेरका ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने भाजपा छोड़ दी है और वह फिर से कांग्रेस में शामिल होंगे। चार बार के राजकुमार विधायक वेरका ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दो हफ्ते पहले बैठक की थी, लेकिन अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। राजकुमार बड़े दलित चेहरे हैं और उनकी दलितों में अच्छी पकड़ है। राजकुमार वेरका ने कहा, मैं बीजेपी छोड़ रहा हूं। मैं ये समझ गया हूं कि केवल कांग्रेस ही देश को एकजुट रख सकती है। मैं कांग्रेस में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहा हूं। पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद राजकुमार वेरका ने पिछले साल जून में कांग्रेस छोड़ दी थी। इसराइल और हमास के बीच चल रही लड़ाई में दोनों पक्ष एक दूसरे के विनाश करने की तैयारी के लिए कमर कस लिए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह सिर्फ हमला नहीं है बल्कि युद्ध है और उनका देश इस युद्ध में हमास को ऐसा सबक सिखाएगा जैसा किसी ने सोचा नहीं होगा। 7 अक्टूबर की भोर में हमास के हमले से शुरू हुई इस लड़ाई में अब तक हमास ने गाजा पट्टी से इसराइल के खिलाफ 6,000 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइल दाग चुका है। हमले में 1,300 ज्यादा इसराइलियों की मौत हो चुकी है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी हैं। इसके अलावा 3,200 से ज्यादा इसराइली घायल हैं। अब तक हमास ने 120 परिवारों को बंधक बनाया हुआ है। इसराइल के जवाबी हमले में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके और फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। लड़ाई लगातार जारी है। दिल्ली NCR और नोएडा में अगले कुछ दिनों तक पानी की दिक्कत होने वाली है। अक्टूबर महीने में गगनहर की सफाई शुरू हो गई, जिसके चलते आगामी 20 दिन तक देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में भी गंगा जल की सप्लाई बाधित रहेगी। बताया जा रहा है कि नोएडा और गाजियाबाद की करीब 20 लाख लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि हरिद्वार से गंगन नहर का पानी रोक दिया गया है। हालांकि गाजियाबाद में नगर निगम द्वारा नलकूप से पानी की आपूर्ति की जाएगी, जो अपर्याप्त होगा। मिली जानकारी के अनुसार आगामी 24 अक्टूबर से 14 नवंबर गगनहर की सफाई कराने की योजना है, जिसके चलते दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में गंगा जल की आपूर्ति बाधित रहेगी। CBI ने दो लापता मणिपुरी छात्रों के मामले का मुख्य षड्यंत्रकर्ता होने के संदेश में 22 वर्षीय एक युवक को पुणे से गिरफ्तार किया। दोनों छात्रों के बारे में माना जा रहा है कि उनकी हत्या कर दी गई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि CBI की एक विशेष टीम ने पाउल नमांग को बुधवार को पुणे से गिरफ्तार किया। अदालत में पेश करने के लिए उसे गुवाहाटी ले गई। उन्होंने बताया कि विशेष अदालत ने उन्हें 16 अक्टूबर तक CBI की हिरासत में भेज दिया। उन्होंने बताया कि CBI को इस मामले में पाउल लुन मांग के मुख्य षड्यंत्रकर्ता होने का संदेह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि लगभग 100 करोड़ भारतीय अगले वर्ष लोकसभा चुनाव में मतदान करने के पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि EVM ने देश की चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और दक्षता बढ़ा दी है। मोदी जी ने G20 के सदस्य देशों की संसदों के पीठासीन अध्यक्षों एवं सभापतियों के 9वें सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रतिनिधियों को लोकतंत्र के उत्सव को देखने के लिए अगले साल फिर भारत में आने के वास्ते आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भारी मतदान देश की संसदीय परंपराओं में लोगों के भरोसे को दर्शाता है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।